तुर्की साम्राज्य 14वीं एवं 15वीं शती में दक्षिण पूर्वी यूरोप के कई भागों पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित हुआ। इस निरंकुश साम्राज्य की मूलभूत विशेषता यह थी कि सुल्तान का अपने साम्राज्य में धन के समस्त स्रोतों पर असीमित अधिकार था। इस साम्राज्य में कोई अस्थायी अथवा पैतृक कुलीन वर्ग विकसित नहीं हुआ, क्योंकि इसमें संपत्ति की सुरक्षा नहीं थी। धन और प्रतिष्ठा दोनों राज्य द्वारा ही देय थे। कोई भी पद राज्य में अधिकारी की स्थिति का ही प्रदर्शन था। तुर्क यूरोप में 14वीं शताब्दी के मध्य में आए थे, जब उन्होंने उन स्लाव राज्यों का दमन प्रारंभ किया जो बैजंतियाई साम्राज्य के पतनोपरांत उदित हो रहे थे। उनके राज्य को ओटोमन सल्तनत का नाम दिया जाता है। यह नाम उनके एक बड़े राजनीतिक नेता ओटोमन अथवा उस्मान के नाम पर पड़ा। मृत्यु 1326 ईस्वी। 1389 ईस्वी में उन्होंने सर्बियन सेना को पराजित किया एवं अगले 4 वर्षों में बल्गारिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 15वीं शती में कुछ समय तक हंगेरियाई उनका सामना करते रहे, किंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया एवं ओटोमन सेनाओं ने दक्षिण पूर्वी यूरोप की अपनी विजय पूर्ण की। 15वीं शती के अंत तक ओटोमन सत्ता डेन्यूब से अल्बानिया एवं यूप्रेट्स तक फैल चुकी थी। सुल्तान सेलिम प्रथम ने केवल सीरिया, इजिप्ट एवं पेलेस्टीन पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु बगदाद के खलीफाओं की परंपरा का भी अंत कर दिया। और इसके बाद इस्लामिक विश्व का एक ही नेता होने लगा, और वह था सुल्तान। तुर्की विजयों का गौरवपूर्ण समय उनके प्रथम 10 सुल्तानों का समय रहा, जिसका चरम उत्कर्ष सुलेमान महान के समय में हुआ। 1520 से 1566 सुलेमान ने बेलग्रेड पर अपना अधिकार करके 1521 ईस्वी में मोहाक्स के स्थान पर हंगरी की सेनाओं को भी पराजित कर दिया। 1529 में तुर्की ने वियना पर घेरा डाला एवं हंगरी की राजधानी बूदा पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह तुर्की की यूरोप में बढ़ने की अंतिम सीमा थी। यद्यपि 1683 तक वे वियना पर आक्रमण करने की चेष्टा करते रहे। तुर्क मूलतः एक खानाबदोश एवं सैनिक शक्ति थे, जिनकी सफलता के कारण थे उनका सैनिक संगठन, धार्मिक उत्साह, योग्य नेतृत्व और यूरोप की पारस्परिक फूट। ओटोमन साम्राज्य एक सैनिक निरंकुशवाद था, जिसका आधार सैनिक विजय थी। संस्था एवं संस्कृति दोनों ही दृष्टियों से तुर्क विजेता अपने विजेतों से नीचे स्तर के थे। राजनीतिक संगठन के बारे में उनका ज्ञान वैजंतियाई साम्राज्य पर ही आधारित था। 18वीं शती से पूर्व पश्चिम यूरोप से उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया था। तुर्की की अपनी वास्तविक सेना प्रमुखता घुड़सवार सैनिक थे। घुड़सवार सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले भूमि मिलती थी, किंतु यह सेना पर्याप्त नहीं थी। अतः तुर्की ने विजित प्रदेशों से ही सैनिक प्रतिभा एवं संगठन दोनों ही जुटाए। उनकी सबसे प्रसिद्ध संस्था थी एक चुनी हुई सैनिक संस्था, जिसे जेनिस रीज कहा जाता था। इसकी भर्ती प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक ह्यूमन टैक्स द्वारा की जाती थी। उनके ईसाई प्रजाजनों से यह आशा की जाती थी कि वे प्रत्येक 5 में से 1 के अनुपात में अपने बेटे दान करेंगे। उन्हें फिर मुस्लिम धर्म के अनुसार पोषित किया जाता था और पेशेवर सैनिकों अथवा प्रशासकों की तरह प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें व्यापार अथवा विवाह की मनाही थी, अन्यथा उन्हें सेवा के बदले अच्छा पुरस्कार दिया जाता था। अपने घर एवं वातावरण से बिल्कुल पृथक वे पूर्णतया सुल्तान पर ही निर्भर रहकर बड़े होते थे। उनके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द गुलाम दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके साथ कोई भी सामाजिक प्रतिबंध नहीं जुड़ा था। राज्य के ऊंचे ओहदे पर वे बैठ सकते थे। अपने विशाल विजित प्रदेश पर तुर्की ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य आत्मसात करना अथवा दंडित करना नहीं था, अपितु शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना एवं राजकोष के लिए धन प्राप्त करना था। संगठन के शीर्ष पर स्वयं सुल्तान था, वही सेनानायक भी था। उसका चयन उस्मान परिवार से ही होता था। वह राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों प्रकार का नेता था जो स्वयं कानून के ऊपर था। वह यूरोप का सर्वाधिक धनी बादशाह था। उसके स्वराज्य के स्रोत थे मुस्लिमों की आय पर टैक्स, काफिरों द्वारा दिया जाने वाला व्यक्ति कर, भूमि कर, टैरिफ, जुर्माने कर एवं युद्ध में लूटा माल। साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें सेंटजिक्स कहा जाता था। उनके प्रशासक वे अथवा पासा कहलाते थे। उनके अधीन बहुत से अधिकारी थे जिन्हें राज्य सेवा के बदले जागीर मिलती थी। दक्षिणी पूर्व यूरोप में तुर्की ने सामरिक महत्व के स्थानों पर दुर्गीकरण कर लिया था। 19वीं सदी से पूर्व तुर्की साम्राज्य को अपने ईसाई प्रजाजनों पर ध्यान करने में कभी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ था। विजित प्रदेश दो भागों में विभक्त थे, एक तो वे जो सीधे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में थे और दूसरे वे जो केवल खिराज देते थे। उदाहरणार्थ यूरोप में मालदेविया एवं वलेकिया के प्रदेश खिराज देने वाले थे, बाकी बालकन प्रदेश प्रथम श्रेणी में आता था। यह सोचना गलत होगा कि यूरोप में तुर्की राज्य कोई बहुत कठोर या क्रूर शासन था। अपने वैभव काल में साम्राज्य काफ़ी सहिष्णु साम्राज्य था। वह ईसाई किसानों के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता था, किंतु 18वीं सदी आते आते प्रशासकीय संस्थाओं का हास्य होने लगा था और शासक वर्ग में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। वास्तव में पतन के चिन्ह तो 16वीं सदी में ही नज़र आने लगे थे। प्रारंभिक सुल्तान अर्धयोद्धा अर्धधार्मिक नेता थे। उनकी सफलता की कसौटी अर्जित युद्ध लूट थी, जिससे वे अपना वैभव बनाए रखते थे। जब विजयों का क्रम बंद हो गया और साथ साथ लूटपाट भी, तब सुल्तान और उनके वजीर उस वैभव को बनाए नहीं रख सकते थे जिसका उन्हें अभ्यास हो गया था। न ही वे बड़ी संख्या में सेना बनाए रख सकने की स्थिति में थे। 17वीं सदी तक आते आते जेनिसरीज की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। उन्हें वेतन नहीं मिलता था, अतः उनमें भी विद्रोही प्रवृत्ति पनप रही थी। तुर्की साम्राज्य का हास्य तुर्की के योग्य नेताओं के कारण कुछ समय तक रुका रहा, किंतु 19वीं सदी में राष्ट्रीय भावनाओं की नई तरंगें उठी। उन्होंने तुर्की साम्राज्य के हास्य की प्रक्रिया को तीव्रतर कर दिया।